3 अगस्त जालंधर, जीवन को परेशानी में नहीं प्रसन्नता में गुजारिए। जैनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब 3 अगस्त को जैन स्थानक गुद मंडी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रकांड विद्वान जैनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने कहा कि किसी खुशनुमा आदमी से किसी ने पूछा कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हो, तो वो बोला, मैंने अपनी जिंदगी से साइड वाला मिरर यानी कांच हटा लिया जिसमें कि पीछे घटती घटनाएं दिखती है। बीती जिंदगी का रोना रोना बंद कर दें, शादी किसी से कर ली और अब सोचते हैं कि इससे नहीं उससे करता तो ठीक था। यह सब सोचना बंद करिए, जो इस समय है उसका उपयोग कैसे किया जाए वे महत्वपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति आया, वो अपने पिता पर गुस्सा कर रहा था। उसका कहना था कि पिताजी ने 2 मकान में बड़ा मकान छोटे भाई को दे दिया, मेरे साथ पक्षपात किया, बेकार है। तब हमने समझाया, टेंशन मत पालो, मकान छोटो दिया तो क्या हुआ, बाकी सभी धन संपत्ति तो बराबर दी है। फिर पिता ने यह सोचा होगा कि बड़ा बेटा योग्य है, वे कमा लेगा, अतः तुम पिता की निंदा करना छोड़ दो, अपना मन काम में लगाओ। वे मान गया, पिता की निंदा करने का त्याग कर दिया, व्यापार मन से किया। 5 वर्ष में तो जितना था उससे 100 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया। अतः वर्तमान का उपयोग करना सीखो। पहले माइक कुमाइक नहीं होते थे, लेकिन आजकल माँ बाप का भी कोई भरोसा नहीं रहता, माता पिता भी अपनी संतान को मारने वाले बन जाते हैं। नीतिकारों ने भी कहा है, ऋणन करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु, पंडित्य कर्जा लेने वाला बाप पुत्र के लिए शत्रु है, दुराचारिणी माता पुत्र के लिए शत्रु है। ब्रह्मदत्त को मारने के लिए उनकी माँ ने ही लाक्षाग्रह में आग लगाई थी। रूपवती पत्नी पति के लिए शत्रु है। सुंदरी पत्नी मदनरेखा के चक्कर में युगबाहु को जान गंवानी पड़ी। अपंडित बेटा बाप के लिए शत्रु है। राजस्थानी में एक कहावत चलती है कि शादी किस लड़की से की जाए, तो यह कहा जाता है कि जिस लड़की को देखो और उससे आंखें हटे ही नहीं तो उस लड़की से भी शादी नहीं करना, और जिस लड़की को देखो उसे देखने की इच्छा ना हो उस लड़की से भी शादी नहीं करना, व्यर्थ के पापों का अनुमोदना नहीं करना। जैसे कि पाकिस्तानी बार बार तंग करता है, एक बार आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान का पत्ता ही साफ हो जाए। ऐसा आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि कभी कभी गहन कर्मों का बंधन हो जाता है। धर्म स्थानक साधना के स्थान तो है ही, इसके सुरक्षा के स्थान भी हैं। जब भी व्यक्तिगत या सामूहिक संकट आवे तब धर्म स्थानक में आकर ध्यान में लग जाइए, आपके संकट दूर होते नजर आएंगे। क्षुलक मुनि की आधी घटना कल सुनाई थी। क्षुलक मुनि नृत्य देख रहे थे, निरंतर नाचने से नर्तकी भी थक रही थी। नृत्य मंडली की बूढ़ी नायिका मुखिया नर्तकी ने देखा, अरे यह क्या, खेती पटने के समय किसान सो रहा है, नृत्य का इनाम मिलने का समय आया तो नर्तकी शिथिल होकर झपकियां लेने लग रही है, स्वर लड़खड़ाने लग गए हैं, कदम भी लड़खड़ाने लग गए हैं। मधुर शब्दों में उसने गीत का आलाप भरते हुए नर्तकी को सावधान किया, सुतुगायन सुतुवायन सुतु नचियन श्याम सुंदरी अनुपालय दिहरायन उसुमिनन ते मा पमाये हे श्याम सुंदरी। तूने लंबे समय तक सुंदर गाया, सुंदर बजाया और सुंदर नृत्य किया, अब थोड़े से समय के लिए प्रमाद न कर, यही तो फल मिलने का समय है। क्षुलक मुनि एक किनारे खड़ा अभिनय देख रहा था, उसने भी यह गाथा श्लोक सुनी कि सहसा उसकी तन्मयता टूट गई, उसे झटका सा लगा, गाथा के अर्थ पर चिंतन करने लगा तो उसकी आंखें खुल गई। तुरंत उसने अपने कंधे का रत्न कंबल नर्तकी को दे दिया। उधर राजकुमार ने यह गाथा सुनते ही अपने मनोजतिक कुंडल उतार कर नर्तकी की झोली में डाल दिए। तभी एक और खरी राजकुमारी ने अपने गले का रत्न हार उतार कर नर्तकी के हाथ में थमा दिया। इधर राजमंत्री ने भी उसी क्षण अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और नर्तकी के सामने रख दी। एक तरफ खरी श्री कांता नामक सार्थवाही जो उस नगर की कुलवधू थी, उस कुलवधू ने अपने हाथ के रत्न जतित करे निकाल कर नर्तकी को दे दिए। महावत ने भी स्वर्ण निर्मित अंकुश नर्तकी को दे दिया। मुनि राजकुमार राजकुमारी मंत्री कुलवधू महावत ने एक गाथा पर इस प्रकार धन बरसाते देखकर वृद्ध राजा को आश्चर्य के साथ गुस्सा भी बहुत आया। मेरे देने से पहले इन लोगों ने इनाम क्यों दिया और फिर इतना बड़ा इनाम क्यों? राजा ने सर्वप्रथम क्षुलक की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि डाली। मुनिवर नृत्य गीत पर इतने मुग्ध हुए कि 1,00,000 मुद्राओं का रत्न कम्बल नर्तकी को पुरस्कृत में दे डाला। राजन नर्तकी की इस गाथा से जो ज्ञान मिला है उसकी तुलना यह रत्न कम्बल कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा क्या बोध मिला जरा सुने तो सही। राजा ने एक हास्य के साथ मुनि के मुख की ओर देखा। मुनि ने कहा, राजन मैं भी एक राजकुमार था, स्वयं की कठोर साधना करता रहा किंतु मन भोगों की ओर दौड़ता ही रहा, रोकने पर भी वे नहीं रुका, तो गृहस्थ आश्रम की ओर चल पड़ा। साधु के व्रत और नियमों का परित्याग कर मैं घर की ओर जा रहा था कि मार्ग में आपके इस नृत्य में मन उलझ गया। रात भर खरा खरा यह नृत्य देखता रहा। अभी उस बूढ़ी नर्तकी ने यह गाथा सुनाई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने नींद में सोए मुझको झकझोर दिया हो। उसका यह पद अनुपालय दीहरायन उसमिनंते मा पमाये। दीर्घकाल तक जिस पद का अनुसरण किया अब थोड़े से के लिए उसे छोड़कर आलसी न बने मुझे जगा गया। माँ गुरुनी गुरुवार और आचार्य के उपदेश से जो मन नहीं जगा वे सहसा ही इस गाथा ने मुझ पर वे उपकार किया है कि बस मेरा साधक जीवन पतित होते होते बच गया। इसी प्रसन्नता में मैंने यह रत्न कम्बल नर्तकी को दे डाला। क्षुलक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार से पूछा तुमने किस बात पर प्रसन्न होकर नर्तकी को अपने रत्न जटित कुंडल दे दिए बेटा। राजकुमार ने सिर झुकाया पिताजी मेरी दुष्टता मात हो। राज्य के लोग में अंधा बनकर मैं आपको विष देने की फिराक में था। नर्तकी की गाथा ने मेरे मन के चोर को पकड़ लिया। मैंने सोचा जीवन भर जिस पिता की सेवा की अब बुढ़ापे में उसे यूं माच डालना ठीक नहीं है। अब तो पिताजी बूढ़े हो गए हैं थोड़े दिनों के और मेहमान है फिर राज्य मुझे मिल ही जाएगा और मैं राजा बन ही जाऊंगा। अतः मैंने सोचा इस थोड़े से समय के लिए इतना बड़ा कलंक का टीका सिर क्यों लगाएं। इस विचार ने मेरे मन के पाप को धो डाला। इसी उपकार के लिए नर्तकी को मैंने रत्न जटित कुंडल उतार कर दे दिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा का हृदय आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से तरंगित हो उठा। एक और खरी राजकुमारी से राजा ने पूछा बेटी तुमने किस बात पर अपना अमूल्य रत्न हार दे दिया। राजकुमारी ने कहा पिताजी मैं इतनी बड़ी हो गई मेरी उम्र शादी के योग्य कभी की हो गई थी पर आपने खर्चे की सोचकर अभी तक शादी नहीं की। मैंने सोचा पिताजी तो शादी करेंगे नहीं अतः आज मैं हीरे मोती आदि बहुमूल्य आभूषणों की पेटी लेकर नगर सेठ के पुत्र के साथ भाग रही थी। फिर यह गाथा सुनकर सोचा अब पिताजी तो कितने दिन के मेहमान है फिर भैया राजा बनेंगे। जब भैया राजा बन जाएंगे तो धूमधाम से मेरी शादी किसी राजकुमार से कर देंगे। फिर थोड़े से दिनों की बात है बहुत गई थोड़ी रही इससे प्रेरणा लेकर सोचा भावी जीवन कलंकित नहीं करूंगी अत हार दे दिया। बेटी की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती का पश्चाताप करते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया और खुशी के दो आंसू बह चले। राजा ने मंत्री की ओर देखा मंत्रीवर आपने किस बात पर प्रसन्न होकर हीरे की अंगूठी नर्तकी को दे दी। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा अपराध क्षमा हो मैं जीवन की संध्या वेला में अपने राजगर्म से भ्रष्ट हो रहा था। आपके सीमावर्ती शत्रु राजाओं द्वारा प्रलोभन के कारण मैं आपके साथ भयंकर धोखा करने वाला था। शत्रु राजा को अपने राज्य की गुप्त सूचनाएं देने को तैयार हो गया था पर नर्तकी की गाथा सुनते ही मेरी भटकी हुई आत्मा सतपथ पर लौट आई। जीवन भर वफादारी से जिस राजगर्म का पालन किया उसे अब थोड़े से जीवन के लिए त्याग देने की मूर्खता क्यों करूं? अतः इस गाथा ने मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर पुनः सुदृढ़ बना दिया है। इसलिए नर्तकी ने यह जो बोध दिया है उसी का आभार मान मैंने हीरे की अंगूठी उसे दे दी। अब राजा ने कुलवधू से पूछा पुत्री तुमने किस बात पर अपने अमूल्य हाथ के करे दे दिए। लजावश कुलवधू की आंखें नीचे झुक गई। महाराज क्या कहूं 12 साल से परदेश गए पति के विरह में तड़प रही हूं। अब तक धैर्य के साथ किसी तरह अपने कुलधर्म का पालन किया पर इस भौतिकता की चकाचौंध में इस रागरंग के मादक वातावरण में मेरे धैर्य का बांध टूट ही गया और मैं अपने कुलधर्म की मर्यादा तोड़ने पर उतारू हो गई। किंतु नर्तकी की गाथा ने मेरे गिरते हुए मनोबल को सहारा दिया मैं पतित होने से बच गई। 12 साल तक जब इंतजार किया तो अब थोड़े दिन और रहे हैं पति की राह देखनी चाहिए। क्षणिक भावावेश के कारण यूं कुल को कलंकित क्यों करूं? इस प्रकार मैंने नर्तकी का उपकार माना और उसके प्रतिदान में यह हाथ के करे दे दिया। महावत से पूछा तो कहा मैं भी पड़ोसी राजा के प्रलोभन में फंसकर राजा हस्ती को मारने का मन बना चुका था पर उक्त गीतिका ने मुझे मेरे कर्तव्य के प्रति सचेत कर दिया इसीलिए पुरस्कार दिया। रंगमंडप में श्रृंगार रूपे की जगह शांतरस का स्रोत उमर पढ़ा। मुनि राजकुमार राजकुमारी मंत्री कुलवधू व महावत के उद्बोधक प्रसंग सुनकर राजा का हृदय प्रबुद्ध हो उठा। सोचा अब मेरे जीवन की संध्या वेला आ चुकी है भोगों में कब तक फंसा रहूंगा कब तक राज्य से चिपका रहूंगा। अब तो यह छोड़कर आत्म साधना की ओर उन्मुख होना चाहिए संयम धारण कर आत्मकल्याण करना चाहिए। राजा ने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंपा और स्वयं क्षुलक मुनि के साथ आचार्य श्री के चरणों में पहुंचकर प्रव्रजित हो गया। एक दीप अनेक दीप जला देता है दीप से दीप प्रज्वलित होते जाते हैं। श्रीमती ज्योति जी जैन के 24 की तपस्या है। नरत्न श्री धर्मवीर जी महिला रत्न अनुजी सहजोड़े आठ की तपस्या है। आज का तेला मीनू जी जैन, बेला नृतशील जी जैन, उपवास पारुल जी जैन के है। दो दिन से महिला शिविर चल रहा है। महिलाएं सैकड़ों की संख्या में भाग ले रही है। बाहर से दर्शनार्थियों का निरंतर आवागमन जारी है। धर्म ध्यान का थाथ लगा हुआ है। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।